अगली बात, मशीयत और इरादे की तकमील का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला अपनी मशीयत और इरादा पूरा करने के लिए किसी दूसरे की मशीयत या इजाज़त का मुहताज नहीं। लफ्ज़ मशीयत थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, मशीयत का लफ्ज़ शाह से है, जैसे हम कहते हैं ना इनशा अल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने, या मा शाह अल्लाह, जो चाहा अल्लाह ने। शय उनका लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं ना, आपके पास क्या शय है, क्या चीज़ है, ये वही मशीयत है। तो मशीयत के अंदर लफ्ज़ क्या है कि अल्लाह का कुछ चाहना। दो चीज़ें हैं दुनिया में जो अल्लाह ताला के हुक्म से होती हैं, एक वो चीज़ें हैं जिनके होने पे अल्लाह ताला खुश भी हैं, वो उसको हम कहते हैं रज़ा। यानी मिसाल है कि लोग नेकी करें, लोग जन्नत में जाएं, लोग नमाज़ पढ़ें, लोग माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अल्लाह ताला किसी को हो ये काम करता देखते हैं तो इस पर राज़ी भी होते हैं, ये है रज़ा। लेकिन बाज़ काम है उसकी मशीयत के, वो क्या होते अल्लाह के हुक्म से हैं लेकिन अल्लाह ताला उसे खुश नहीं। मसलन कुफर, लोग कुफर करते हैं, शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं, अल्लाह के हुक्म से ही हो रहे हैं क्योंकि वो खैर और शर का मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला उसे खुश नहीं है। आपको थोड़ी सी बात समझाने के लिए मिसाल देना चाहूँगी कि जैसे एक हुक्मरान है, नया मुल्क बनता है, अब वो मुल्क में मुख्तलिफ चीज़ें बनेंगी, सड़कें भी बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, तो वहीं हुक्मरान एक ख़ास मनी जो है वो अलग करता है जेल बनाने के लिए। क्या हुक्मरान खुश है कि इतना पैसा लगे और जेल की दीवारें बने और सलाखें लगे और इंसानों को बंद किया जाए? नहीं खुश, लेकिन उसको पता है कि ज़रूरत का तकाजा है कि मैं ऐसा करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो नतीजा क्या होगा कि बाद में फसाद फैलेगा। तो ये जो जेल बननी है ना, ये उसकी मशीयत से बनी है, और जो बाकी काम, जो अच्छे काम है, प्रोडक्टिव काम है, वो उसकी रज़ा से है। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी से होती हैं। इसकी दलील सूरह यासीन की आयत 82, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा अन यकूलु लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करता है तो इसका काम बस ये है कि इसे हुक्म दे, हो जा, और वो हो जाता है। हमारे हर काम के ऊपर बस वो कुन कह देना तो वो काम हो जाए। आपको तो कोई काम बहुत मुश्किल लग सकता है ना, बहुत बड़ा और बड़ा नामुमकिन काम है, अल्लाह के लफ्ज़ कुन की देर है सिर्फ, वो कुन कहेगा और वो काम हो जाएगा। इसकी दलील एक हदीस में भी है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और गुफ्तगू करते हुए कहा, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। क्या लफ्ज़ उसके अरबी में? मा शाह अल्लाह व शीता, जो आप चाहें और जो अल्लाह चाहे। आपने फरमाया, क्या तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाते हो? अजालतनी मा अल्लाह ही अदला। एक जगह आता है कि तुम अल्लाह का मुझे निद बनाते हो, अल्लाह का मुकाबल बनाते हो। नहीं, बल ला बल मा शाह अल्लाह वहदा, कहा ऐसा नहीं बल्कि वही होगा जो एक अल्लाह चाहेगा। इसे ही बुखारी की रिवायत है अदबुल मुफरत में। हमारे यहाँ ये शिर्क कितना आम है, अल्लाह और उसका रसूल चाहे, अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी है, अल्लाह का रसूल हमें मक्का बुला ले, अल्लाह का रसूल हमें मदीना बुला ले। अब देखिए, आपकी ज़िंदगी में किसी ने अगर ये कहा था ना, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, तो आपने कहा क्या जलतनी लिल्लाह निद्दा, मुझे अल्लाह का शरीक बनाते हो? तो वो नबी जो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बर्दाश्त ना करे, आज हम उनके नाम पे नातों में ऐसे जुमले बोलें तो क्या ये शिर्क नहीं होगा? इसलिए बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। अल्लाह के साथ नबी को भी हम शामिल नहीं कर सकते, चाहे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो। अगली बात, शरीयत साजी, हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ के तायुन का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 है, या अय्युहन्नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी, आप उस चीज़ को हराम क्यों करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की? क्या आप अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं? अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। एक मौके पे अल्लाह की नबी की बीवियों का कोई ऐसा मामला हुआ था कि आपने शहद खाने से कसम खा ली थी कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, तो ये आयतें नाजिल हो गई थी कि एक हलाल चीज़ आप हराम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नबी के हराम करने का अपने ऊपर मकसद ये था कि फिर उम्मत भी नहीं खाएगी, तो आपने फौरन कुरान पाक में आयतें नाजिल कर दी। आज दुनिया में लोग बुज़ुर्गों को, पीरों को, मुर्शिदों को और न जाने किस किस्म के लकब दे के अपने मुकद्दर के फैसले करने वाला बनाते हैं। उनको पता होता है ये काम गलत है, लेकिन कहते हैं क्या करें, हमारे पीर साहब ने ये हमें कहा है तो हमने ये काम करना है। तो जब अल्लाह का नबी किसी चीज़ को हलाल को हराम नहीं कर सकता, तो दुनिया में कोई और इंसान कैसे कर सकता है। फिर अगली चीज़ इसमें है सिफात में, इल्मे गैब सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है। सूरत आराफ़ की आयत 188 में है, कुल्ला अमलिकुल नफ्सी नफ़ वला दर्रा, ए नबी इनसे कहो मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ताला ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फ़ायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुंचता। मैं तो सिर्फ़ एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ इन लोगों के लिए जो मेरी बात को सुने। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात आए थे कि आपको तकलीफ़ हुई। सीरा की क्लास में इंशाल्लाह आप मज़ीद सुनेंगे कि आपको तकलीफ़ हुई, आपकी बीवी पे इल्ज़ाम लगे, 1 महीना तक मक्का की फ़िज़ा इतनी मदीना की फ़िज़ा बोझल रही, लेकिन आपको ये नहीं पता चल सका कि क्या वाकई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये गुनाह किया कि नहीं किया। फिर आपका दान टूटा, लोगों ने आपकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन आपको नहीं पता चल सका। आप अपनी ज़िंदगी में भी नहीं जानते थे कि कौन क्या कर रहे हैं, वरना तो आप क्या अपने लिए इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते। तो आज जब ये लोग बात कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी को मेरे दिल के भेद पता चल जाते हैं, और अल्लाह के नबी को तो छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को भी, अपने बुज़ुर्गों के बारे में भी यही ख्याल रखते हैं लोग कि हम कहीं भी हों फ़ौरन उनको पता चल जाता है कि हम मुश्किल में, और फिर उसी से आगे शिर्क के दरवाज़े खुलते हैं। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम शिर्क की तफसीलात देखेंगे। एक रिवायत सही मुस्लिम की है हज़रत अबू हुरैरा से, फरमाते हैं कि एक रोज़ अल्लाह के नबी और सहाबे कराम के दरमियान, एक दिन अल्लाह के नबी सहाबे कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया, जिससे पूछ रहे हो वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता मैं तुझे इसकी निशानियाँ बता देता हूँ। पहली निशानी ये है कि जब औरत अपना मालिक जने तो ये क़यामत की निशानियों में से है। खुलासा क्या है इसका कि औलादें इतनी नाफरमान हो जाएंगी कि अपने माँ बाप को लौंडी और ग़ुलामों की तरह ट्रीट करेंगी। दूसरी निशानी ये है कि जब बरहना बदन और बरहना पाँव यानी नेकिट रखने वाले या फिरने वाले लोग सरदार बनेंगे, यानी जो देहातों में चरवाहे थे और शेफर्ड्स थे, उनको अल्लाह ताला इतना माल दे देगा कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। और आज ये बात भी सच होती हुई दिखती है। तीसरी निशानी ये है कि जब रेवड़ चराने वाले बड़े बड़े महल तामीर करें तो ये क़यामत की निशानियों में से है। फिर फरमाया, क़यामत तो इन 5 चीज़ों में से है जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। फिर आपने यह आयत तिलावत फरमाई, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, सूरह लुकमान की आयत 34 है, कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। दूसरी चीज़ वही बारिश बरसाता है। तीसरी, रहमे मादर में क्या है इसको वही जानता है। चौथी चीज़, कोई शख्स ये नहीं जानता कि कल क्या करे। और पांचवी चीज़, कोई ये नहीं जानता कि उसे कौन सी जगह पर मौत आएगी। क्या हम में से कोई एक इन 5ों में से कोई एक भी चीज़ जानता है? कोई भी नहीं जानता। हमें तो ये नहीं पता कि आने वाले 1 घंटे में हमारे लिए क्या लिखा गया है। तो लिहाजा सब गैब अल्लाह के हाथ में है। कभी भी शौरी या गैर शौरी तौर पर किसी दूसरे को गैब का भेद ना जाना करें। हमारे यहाँ इसकी मसलन कुछ किस्में हैं, मसलन फलां को तो दिल के भेद पता चल जाते हैं, बस फलां तो मेरी दोस्त है, वो मैं कहीं भी होती हूँ मैं मुश्किल में होती हूँ ना, उसको फ़ौरन पता चलता है। कभी लोग कहते हैं मेरी आँख फड़क गई, कभी कहते हैं वो मेरा दिल धक धक करने लग गया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इंसान को फिर बस दफ़ा मुश्किल में डाल सकती हैं। फिर अगला मसला है, हर वक्त और हर जगह बंदों की दुआ सुनने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। हर जगह हाजिर नाजिर अपनी कुदरत और इल्म के साथ सिर्फ अल्लाह ताला ही है। दलील है सूरत बकरा की आयत 186, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़ इन्नी करीब उजीबु दावत दा इज़ा दआन, और ऐ नबी मेरे बंदे, जब तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो इनको बता दो कि मैं इनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब पुकारता है, मैं इसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए इनको चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं, ताकि लोग राह रास्त पा लें। दूसरी दलील सूरह हदीद की आयत नंबर 4 है, वहुवा माकुम अइनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम होते हो, और जो काम भी तुम करते हो वो इसको देख रहा है। ये कैफियत इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है ना। इंसानों की आदत है कि जब उनको कोई देखने वाला होता है तो बड़े संभल जाते हैं, बहुत एक्सीलेंट दर्जे का काम करते हैं, और जब तन्हा होते हैं या उनको लगता है कि हम किसी की निगाहों में नहीं, तो आंख छुपा के कुछ भी करते रहे। लेकिन जिसको ये बात का यकीन आ जाएगा कि अल्लाह ताला हर लम्हे मुझे देख रहा है, तो फिर उसकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा उस शख्स की निस्बत जो इस एहसास के बग़ैर ज़िंदगी गुजारता है। एक और दलील है इसकी सही मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा से रिवायत है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। लोग बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहने लगे तो आपने फरमाया, अपनी जानों पर नरमी करो, यानी अपनी आवाज़ नीची रखो, क्योंकि तुम किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि उसको पुकार रहे हो जो हर जगह सुनने वाला है, तुम्हारे नज़दीक है और हर वक्त अपने इल्म और कुदरत के सबब तुम्हारे साथ है। आज तो नहीं लोग चीख चीख के पुकारते हैं। दुआ के अंदर आप देखिए कि मुबालगा होता है, बाद दफ़ा इतना चीखने का, बाद दफ़ा रोने का, बाद दफ़ा हुक्म देने का एक अंदाज़ होता है। तो कहा कि तुम्हारा रब सुनता है, करीब से भी सुनता है, दूर से भी सुनता है, तो मुनासिब आवाज़ में उसको पुकारना चाहिए, क्योंकि वो हर आवाज़ को सुनता है। फिर अगली बात, दिलों में छुपे भेद सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। इसकी दलील सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 और 14 है, व असिर्रु कौलकुम अविजहरु बिह इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर अला यालमु मन खलक वहुवल्लतीफुल खबीर। कितना प्यारा अंदाज है। क्या फरमाया, तुम लोग ख्वाह आहिस्ता बात करो या ऊंची आवाज़ से, अल्लाह ताला के लिए यकसां है, क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है। क्या वही न जानेगा जिसने लोगों को पैदा किया, हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ ना कि अला यालमु मन खलक, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को कहती है, क्या मैं नहीं तुझे जानती, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पेट में रखा, क्या मुझे नहीं पता तुझे किस चीज़ से खुशी होती है और किससे नाराज़गी है। तो जब एक माँ ये जुमला बोल सकती है, तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात वो क्यों ना कहे कि क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिलों में क्या है। और कितना सुकून मिलता है ना इस बात से कि अल्लाह मेरे दिल के भेद जानता है। फ़ौरन आप चेक करेंगे, अगर दिलों में बुग़ज़ और कीने भरे हुए ना, तो एकदम आपके होश उड़ जाएंगे। हाय, अल्लाह को मेरे दिल की सारी मुनाफ़कतें पता है, मैं दिल में किसी के लिए क्या सोचती हूँ और ऊपर से क्या कहती हूँ सब पता है। आप एकदम परेशान होंगे। और अगर आप दिल के साफ खड़े हैं और नेकियां करने वाला दिल है, तो आप खुश होंगे, अच्छा अल्लाह को पता है कि मैंने ये नेकी की है। और यही चीज़ फिर इंसान को अल्लाह का कुर्ब देती है। इसकी दलील सही बुखारी की रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से भी है। रिवायत है कि अल्लाह के नबी महीना भर रुकू के बाद कनूत पढ़ते रहे, जिसमें बनू सुलेम के कबाइल के लिए बददुआ फरमाते रहे। हज़रत अनस कहते हैं कि आपने 40 या 70 कुरा, यानी उलमा, रावी को शक है यानी कि 40 से या 70, बाज़ मुशरिकों के पास दीन सिखाने के लिए भेजे। बनू सुलेम के लोग मुकाबले पर उतर आए और इन कुर्रा को कत्ल कर डाला, हालांकि बनू सुलेम और नबी अकरम के दरमियान अहद था, यानी बनू सुलेम ने गद्दारी की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम को इतना रंजीदा कभी नहीं देखा जितना उस मौके पर देखा। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। यानी आप देखिए कि अल्लाह के नबी के इतने प्यारे सहाबी, और वो दिन कि जब एक एक सहाबी एक एक हीरे की तरह कीमती था, गिनती के लोग थे और उसमें से भी 70 लोगों को बहाने से बुलाया गया कि आओ हमारे पास तबलीग करो, और वहाँ जाके कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी को कितना गम आया होगा। और अगर आप लोगों के दिलों के भेद जानते, तो क्या आप अपने प्यारे सहाबा को वहाँ भेजते। और कितना अकीदा वाज़े होता जा रहा है ना, अल्लाह के बारे में सुनते सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम भी मुतय्यन हो रहा है, क्योंकि इन्हीं दो इंतहाओं पे शिर्क होता है, या लोग अल्लाह की ज़ात को कम कर देते हैं या अल्लाह के नबी की ज़ात को बढ़ा देते हैं। ये जो कमी और बेशी है ना, यही ज़िंदगी में फिर बिगाड़ पैदा करती है और इंसान शिर्क की तरफ चला जाता है। अगली चीज़, दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में हैं, जिसे चाहता है अता करता है और जिसको चाहता है छीन लेता है उससे। सूरत आल इमरान की आयत 26 है। इसकी दलील, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा वतन्ज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कह दीजिए, ए अल्लाह, कायनात के बादशाह, तो जिसे चाहे हकूमत दे, जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील करे। भलाई तेरे इख्तियार में है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। कितनी प्यारी दुआ है। और जिसको ये दुआ याद हो जाती है और उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़ने लगता है, तो वाकई वो दूसरों की दौलत और दूसरों की चीज़ों की तरफ नज़र भर के नहीं देखता। उसको लगता है कि ये दूसरों के पास है क्या और कितना कुछ है, और है भी तो ये किसी को कितना उसमें से दे सकते हैं। और एक तरफ मालिक है कि जिसके ख़जानों में जितना मर्जी मांग लिया जाए, सारी दुनिया के इंसानों और जिन्नों को भी दे दे, तो उसके बाद इतनी भी कमी नहीं आती जितनी समंदर के पानी में सुई या उसके अंदर से एक घूंट या एक चोंच भर के लेने से कमी आए। अल्लाह ताला के ख़जाने इतने ज़्यादा हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अनस से रदी अल्लाह अन्हो, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमें इस दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखरत में भी हमें आग के अज़ाब से बचा ले। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। दुनिया और आखरत की सारी भलाइयाँ अल्लाह के पास है ना। और हसना किसको कहते हैं? वो नेमत जो अल्लाह की रज़ा से मिले, यानी वो नेमत जिसको देने से अल्लाह ताला खुश भी हो। और नाफरमानियों का माल कभी भी रिस्क हसना नहीं हो सकता। फिर एक और प्यारी सिफत है मालिक की, दिलों को फेरने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। इंसान कितना दूसरों की वजह से सताए फिरते हैं। बस ख़वातीन को देखे वज़ाइफ कर रही होती हैं कि मेरे मियाँ के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए, बाज़ इस चीज़ के वजीफ़े करती हैं कि मेरे शौहर के दिल से मेरी सास की मोहब्बत चली जाए, और न जाने क्या कुछ लोगों से जाके रब्ता रखते हैं और अल्लाह को छोड़ देते हैं। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई अपने घर की बजाय किसी और के डोर की बेल को नॉक करता रहे। जिसके पास है वो दिलों की चाबियाँ, उससे रब्ता नहीं रखते कि अल्लाह इस औलाद का दिल तू बदल दे, शौहर के दिल में मोहब्बत तू डाल दे, दूसरों के दिल में मेरे बारे में गलत फहमियाँ जो आ गई हैं उसको तू निकाल दे। जिसको इस बात का यकीन हो जाएगा ना कि दिलों को फेरने वाला मालिक वो है, वो कभी भी शिर्क के अंदर मुब्तला नहीं हो सकता। दलील है इसकी सूरत अनफाल की आयत 24, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दअकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ वक़ल्बिही वअन्नहु इलैहि तुहशरून। ए लोगों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाता है जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है। और जान रखो कि अल्लाह ताला बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल है, और उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। इससे मतलब क्या निकलता है पूरी बात का, कि जब एक बंदा अल्लाह की पुकार पर लब्बैक नहीं कहता ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर तौफीक छिन जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को नेकी की दावत दें, एक दिन आप दावत देते हैं वो नहीं आता, आप दूसरे दिन फिर दावत देते हैं वो फिर नहीं जाता, तीसरे दिन फिर देते हैं वो नहीं जाता, क्या आप उसके बाद दावत देंगे? रुक जाती है ना बात। बिल्कुल यही बात है कि जब एक बंदा अल्लाह के दीन की तरफ या अल्लाह की तरफ नहीं आना चाहता, तो नतीजा क्या निकलता है कि अल्लाह ताला फिर उससे तौफीक छीन लेता है। तो जाहिर बात है कि दिल उसके हाथ में, तभी वो तौफीक छीनता है। एक रिवायत भी है इसकी दलील में, तिर्मिज़ी की रिवायत है। हज़रत शहर बिन होशब रदी अल्लाहु अन्हो कहते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह जब आपके पास होते थे तो कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा पढ़ते? हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आपकी ज़्यादातर दुआ ये होती थी कि या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल अपने दीन पर जमा दे। मैंने अर्ज़ किया, आप ये दुआ अक्सर क्यों मांगते हैं कि अल्लाह मेरे दिल को दीन पर कायम रख दे? आपने फरमाया, उम्मे सलमा, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसका दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान ना हो। फिर वो जिसे चाहता है दीन हक पर कायम रखता है और जिसे चाहता है राह रास्त से हटा देता है। तिर्मिज़ी की रिवायत है। ज़रा सोचे अपने दिल को, और आपके दिल के साथ लगी हुई हैं रहमान की उंगलियाँ बग़ैर तशबीह के। अल्लाह के लिए हम कोई मिसाल नहीं बयान कर सकते कि उसकी उंगलियाँ ऐसी हैं जैसे हमारी हैं, लेकिन उसके दिल के उसकी उंगलियों के बीच में दिल हल्का सा उंगली को हिलाता है ना तो दिल बदल जाता है। जहाँ कल तक मोहब्बत थी वहाँ नफ़रत हो जाती है, जहाँ नफ़रतें थी वो मोहब्बतें होने लगती हैं। ये कहाँ से होता है? ये अल्लाह की तौफीक से होता है। इसलिए किसी इंसान से कोई भी ज़रूरत है ना तो फ़ौरन अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ कायम कर लें, वो ख़ुद ही उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत डाल देगा।